अगली आयत में अब हमें थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिल रहा है, जिसमें घर से बाहर के लोग यानी एक सोसाइटी के लोगों के साथ क्या मामला हो। फरमाया आयत 152, वला तकरबु माल यतीम, और देखो यतीम के माल के करीब ना जाना, इल्ला बिल्लती ही अहसन, हाँ मगर उस तरीके से जो बेहतरीन हो। यानी यतीम का माल ना हक ना खाना, अच्छे तरीके से उसके माल को हाथ लगाना। फिर क्या करना, हत्ता यबलुगा अशुद्दहू, यहाँ तक कि वो अपने सने रुश्त को पहुँच जाए, मुराद ये है कि वो जवान हो जाए। यहाँ लफ्ज़ देखिए अशुद्ध है, शीन पे पेश है, यानी बलूगत के अंदर 10 साल और ऐड कर लो तो अकली बलूगत ज़हनी बलूगत भी आ जाए। इस पे सारी बात पीछे हमारी हुई थी सूरत निसा में। यहाँ यतीम के माल को अल्लाह ताला ने एक किस्म का प्रोटेक्ट किया है कि यतीमों को उनके माल दो, जब उनके अंदर समझ आ जाए उससे पहले उनके माल को किसी काम में लगा दो। ज़रूरतन अगर तुम्हें उसमें से कुछ लेना पड़े तो बिल्कुल मारूफ तरीके से लो, सामने जाहिर करके लो, ढका छुपा ना हो, बल्कि उसको किसी भी अच्छे तरीके से लिया जाए। पिछली आयत में एक छोटी सी बात रह गई, शायद आपके फ़ायदे की, वो नोट कर ले। इल्ला बिल हक आया था कि किसी नफ्स को कत्ल ना करो मगर हक के साथ। तो हक के साथ कत्ल की 3 सूरतें होती हैं इस्लाम में, पता है आपको, लेकिन सिर्फ एक जगह जमा करके लिख लें। नंबर एक, कोई इंसान किसी को कत्ल करे तो कत्ल के बदले में कातिल को मारा जाए कसास में। दूसरा क्या है, शादीशुदा जानी जिना करे कोई, शादीशुदा होने के बाद तो हुकूमत वक्त फिर उसको रजम करेगी। और तीसरा, इस्लाम पे आने के बाद मुर्तद, जो इस्लाम को कबूल करे और छोड़ दे, तो उसके जरासीम से दूसरों को बचाने के लिए। इसी तरह फिर कोई ऐसा बंदा जो दारुल इस्लाम में फसाद फैलाए, यानी हुकूमत का तख्ता उलट दे, या वहाँ जाके कोई हाईजैकिंग की कोशिश करे, कानून को अपने हाथ में ले, फिर उसके साथ जंग की जाएगी। अदरवाइज किसी को कत्ल करने और मारने का हुक्म नहीं है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ह्यूमन राइट्स को सिक्योर किया जा रहा है इन सारी आयतों में। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगली चीज़ जिसका इन आयतों में हुक्म है वो क्या है, वह औफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, और पूरा करो नाप और तोल किस्त के साथ। कैल क्या है, लिक्वर्ड्स का, जैसे लीटर जिसमें तो गैलन्स, ठीक है, लिक्वर्ड्स को जो हम पानी को, जूस को, दूध को तोलते हैं, और मीज़ान वो चीज़ होती है जिसका वज़न किया जाए, सॉलिड्स को जो करते हैं। बिल किस का मतलब ये कि अदल के साथ, इंसाफ में, यानी तराजू के साथ। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम नहीं किसी को ज़िम्मेदार ठहराते मगर उसकी वसत के मुताबिक, यानी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक ये सब काम कर लो, कोशिशें कर लो। फिर इसके बाद अगर तुम्हारे लिए कुछ काम करना मुश्किल हो जाए, तुमने पूरी कोशिश की लेकिन नहीं कर सके, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। मतलब यह है कि तुम अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह से डरो, अल्लाह का काम करो। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह ताला से डरते जाओ, फिर उसके बाद कोई कमी बेशी हो जाएगी तो अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। और दुआएं भी पढ़ते रहो। सूरत बकरा की आखिरी आयत 286 में भी हमने पढ़ा कि रब्बना ला तुआखिसना इन नसीना अख्ताना, कि अल्लाह हमें ना पकड़ना अगर हम भूल गए या हमसे ख़ता हो गई। तो पता क्या चला कि ये सब काम करने के साथ साथ अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगते रहो। अब अगला हुक्म क्या है, व इज़ा कुल तुम फ़ादिलो, और जब भी बात करो तो अदल की बात करो, सीधी बात करो, लगी लिपटी नहीं करो और हैंकी पैंकी नहीं करो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रूड हो जाओ और बदतमीज़ हो जाओ और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और ये कह दो कि जी मैं तो दिल में बात नहीं रखती। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा लोग सीधी बात करते हुए फिर रूड हो जाते हैं। अदल का मतलब क्या होता है कि जिस मौके पे जिस तरह की बात करनी चाहिए वैसी बात करो, इंक्लाइनेशन ना हो, किसी की साइड ना लो। वलो का ना जा कुर्बा, अगर जो तुम्हारे रिश्तेदार का ही मामला हो, यानी कसूर रिश्तेदार का है, लेकिन अदल कहता है कि तुम अदल की बात करो, चाहे रिश्तेदार के खिलाफ बात हो रही है तो करनी पड़ेगी, ये मामला रखो, सीधी बात हो, जानिबदारी ना हो, झूठी कस्में ना खाओ, झूठ ना बोलो। वबी अहदिल्लाह ही औफू, और अल्लाह के अहद को भी पूरा करो। अल्लाह के साथ कौन सा अहद है, दिन में 17 बार एक अहद हम बांधते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, के अल्लाह तेरी ही इबादत करूंगी, तुझसे ही मदद मांगूंगी। फिर इसी तरह सूरत अल अराफ 127 में वो अहद आएगा जिसको अहदे अलस्त कहते हैं, के अल्लाह ताला को मानने का और उसी की बात को मानने का हुक्म। ये सारी बातें करके फरमाया, ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये हैं वो चीज़ें जिनका अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है ताकि तुम नसीहत अखस करो। ये है सच्चा खूबसूरत दीन जिसके अंदर कोई झोल नहीं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि कोई भी लोग काम करते हैं, जैसे मिसाल है कि कहीं मुल्की राज होते होंगे तो वो दूसरों से छुपाते होंगे, कहीं ख़ानदानी बातें हो रही होती हैं तो इंसान नहीं चाहता कि उसकी बात कोई सुने। बात वो घरेलू सतह पे कोई इस तरह की ऊंची नीची बात हो सकती है कि हम हर वक्त ये नहीं चाहते कि कोई ना सुने। ऐसे ही है ना, हम सब हर वक्त नहीं चाहते कि हर बंदा हमारी या कोई बंदा हमारी प्राइवेसी में दखल दे। लेकिन दीन की तबलीग में, जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं पढ़ा रही हूँ, सूरत फातिहा से लेकर सूरत नास तक पूरा कुरान पढ़ाते हुए, आपको भी अल्लाह मौके देगा इंशाल्लाह, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि 6,666 आयतें पढ़ाते हुए कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि आज का सबक कोई नॉन मुस्लिम ना सुने, आज का सबक कोई बुतपरस्त ना सुने, हाय आज का सबक कोई बहुत मॉडर्न बंदा ना सुने। बिल्कुल मैनिफेस्ट ट्रूथ, आओ सुनो, आओ देखो कितना प्यारा है कुरान। यानी इस्लाम इतना खूबसूरत है और इतना ज़्यादा रियलिस्टिक है कि कोई बात आप दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे पेश कर दें। अब देखिए हमारी क्लासेस होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी बहुत सारे लोगों की होती हैं, ओपन प्लेटफॉर्म्स हैं सारे, वेल टॉक ले लीजिए या दूसरे ले लीजिए, हमें नहीं पता कि कौन सुनता है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है। अल्लाह फितनों से बचाए, कुरान ही की बात करते हैं, सुन्नत की बात करते हैं, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन अगर हम प्लानिंग्स करें उसके ख़िलाफ़, उसकी बातें, और जो लोग अपनी तबलीग में इस तरह का बहुत सारा रंग ले भी आते हैं बाज़ दफ़ा, उस पर क्रिटिसाइज़, उस पर फिर उनको फितने भी आते हैं। तो सीधा सीधा कुरान लोगों को सुनाते जाएं, अल्लाह ताला आपको बहुत सिक्योर रखेगा। हम भी अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों पर अमल की तौफीक दे। आप सोचिए उस बंदे का क्या बनेगा जिसके घर में सब कुछ हो लेकिन उसको पता ना हो। आपके घर में कोई चीज़ थी, मेहमान आ गए, आपको याद नहीं था कि हैं, और मेहमान ने वही चीज़ मांग ली, और आपको थोड़ी सी बेइज्जती का एहसास हुआ या दुख तो हुआ ना कि मैं अपने मेहमान की खिदमत नहीं कर सकी, और मेहमान चला गया। बाद में एक दो दिन के बाद अलमारी खोली या चीज़ें ठीक की तो वो चीज़ निकल आई, दुख होता है। क़यामत के दिन क्या होगा? हम मुसलमानों की अलमारियों में इतनी खूबसूरत शरीयत है, हदीस की किताबें देखें, तफ़हीम देखें, कुरान की तफसीरें देखें, ये ख़जाने हैं, और हमें आज पढ़ने का वक्त भी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद आप देखिए कि थोड़ा सा आगे मामला जो है वो बढ़ता है, इसमें वसीयत की लफ्ज़ से ये वसीयत नामा बन गया। बातें सारी वही हैं जो पहले हो गई हैं लेकिन एक जगह जमा हुई। ये सब बातें करने के बाद अब इसको पाइल अप किया जा रहा है। आयत नंबर 153, व अन्न हाजा सिराती मुस्तकीमा, ये है मेरी सीधी राह, ये है इस्लाम, दीन फितरत, करो क्या, फत तबेहू, बस इसकी पैरवी करो। वला तत्तबी सुबुल, और देखो सुबुल की पैरवी ना करो, सबील की जमा सुबुल, क्या होगा, फतफर्र कबिकुम अन सबीलिही, बस वो तुमको तुम्हारे रास्ते से भटका देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, ये है जिसकी वसीयत की जाती है तुमको, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। कितने सदमे के साथ पढ़ी जाने वाली ये आयत है। अल्लाह कहते हैं इस्लाम सिरात मुस्तकीम है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआएं मांगते हो, ये है सीधा इस्लाम, लेकिन तुम इसको छोड़कर सुबुल में पड़ गए, किस पे, मखदूब और दुआलीन के पीछे पड़ गए। तुम्हें कामयाबी कहाँ से मिले, तुम्हें खुशी कहाँ से मिले? क्या आज का मुसलमान हकीकत में सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है? आज हम इस सीधे इस्लाम को छोड़कर पगडंडियों पे निकले, कहीं शॉर्टकट्स पे निकले, कभी दूसरों को फॉलो करने पे, दूसरों के नक्शे कदम पे चलने में, कहीं तरक्की के नाम पे और कहीं शोहरत के नाम पे, आज देख लीजिए मुसलमानों का ये हाल है। आप इमेजिनेशन में लाएं कि नबी सल्लम या सहाबा कराम में से कोई आज के दौर में आ जाए, क्या लाइफस्टाइल होगा उसका? अबू बकर कैसे कपड़े पहनेंगे, हज़रत आयशा कैसे कपड़े पहनेंगी, हज़रत उमर फ़ारूक किन असूलों पे तिजारत करेंगे? क्या वो भी वही जुमले बोलेंगे जो सुबुल वाले आज हम बोलते हैं कि आज के दौर में सूद के बगैर गुजारा नहीं, इंश्योरेंस के बगैर गुजारा नहीं, आज ये नहीं वो नहीं ये नहीं? अल्लाह कहता है ला तत्तबी उस सुबुल। आज हम मुसलमानों को भी जो परेशानी है ना, वो इसलिए कि हम दो चीज़ों को लेके साथ चल रहे हैं। एक दफ़ा फोकस्ड होके देखिए, मुझे जो सऊदी अरब में जाकर एक सबसे ज़्यादा पुरसकून चीज़ नज़र आई वो क्या थी, किसी बोर्ड पे, किसी रोड किनारे पे आपको कोई औरत नहीं दिखेगी, काउंटर्स पे कोई नहीं दिखेगी। कैन यू बिलीव, हम जब उम्रे के लिए एंटर होना था अभी, तो सामने टर्मिनल पे सब जगह मर्द थे। अच्छा, दुबई तक में भी औरतें होती हैं, यूएई में कंट्रीज़ में करती हैं औरतें। अब मेरे लिए वही क्वेश्चन था जो मेरी जैसे और भी बहुत सारे साथियों का होगा कि निकाब किया हुआ है तो काउंटर पे तो औरतें नहीं। के मुंह में हमारी ख्वाहिश होती है कि जहाँ भी किसी भी मुल्क में जाएं तो जिस काउंटर पे लेडी है वहाँ जाएं ताकि प्रॉब्लम कम हो, लेकिन यहाँ तो ब्रदर्स हैं। और आपको पता है कि क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा ही नहीं निकाब उठा, स्टैम्प कर दिया, कुछ नहीं हुआ। मोस्टली तो खोले होते हैं, कुछ लोगों को एक गलत फहमी भी है कि एहराम के अंदर चेहरा खुला रखना होता है, तो 80% तो जो भी सिस्टर्स वहाँ मेरे साथ और थी सबके खुले हुए थे मुँह। मेरे ख्याल है कोई 10% 15% होंगी जिनके निकाब है, लेकिन मुझसे उस ब्रदर ने नहीं पूछा कि खोलो, कोई भी हो सकता था। पासपोर्ट मेरा हाथ में था, जो देखा उसको स्टैंप लगा, मेरे हस्बैंड से बात की। तो मैं सोचती हूँ कि जिस जगह जिस सोसाइटी में औरतें नहीं होती, और वल्लाह ही ऐसे छोटे छोटे फील्ड्स होते हैं कि जिन मुल्कों में जहाँ भी आप देखें ऐसे औरतें मर्द बैठे होते हैं, आपस की उनकी बेतकल्फियाँ आपको बोझल करती हैं, आप लाइनों में लगे उनकी खड़मस्तियाँ देख रहे होते हैं। एक तो आप थके हुए, एक आपको जल्दी निकलना है, और एक वो आपस में अदाएं दिखा रहे होते हैं। औरत को पीछे करके क्या सऊदी अरब पीछे रह गया? मैं सऊदी अरब की कोई तारीफ नहीं कर रही, ना मैं तनकीद कर रही हूँ, सिर्फ मैं उसको एज ए इस्लाम का करंट जो भी इस वक्त दुनिया में सबसे अच्छा रोल मॉडल है वो पेश करती हूँ। आप वेस्ट में औरत को हर काउंटर पर बिठा बैठे, क्या इनकी इकोनॉमी और सऊदी अरब की इकोनॉमी कोई तकाबुल है? ये दिन ब दिन नीचे, वो दिन ब दिन ऊपर। क्यों नहीं मानते कि अल्लाह के रस्तों पे चल के इज्जत मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, माल भी मिलेगा? हम कहते नहीं, हम खुद कोशिश करेंगे, औरत भी कमाएगी, मर्द भी कमाएगा, औरत बच्चे भी पाले, बाहर के काम भी करे, तो उसका नुकसान यही होगा जो आज के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तुम्हें नहीं दी, तुमसे पहलों को भी दी, आयत 154, थुम्मा आतैना मूसल किताब तमामा, फिर हमने मूसा को किताब दी तमाम, अलल्लज़ी अहसना व तफसील लिकुल्ली शईं व हुदा व रहमा। एक स्ट्रेच में पढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर हमने मूसा को किताब दी थी अपनी नेमत पूरी करने के लिए एहसान की रविश अख्तियार करने वाले पर, और इसमें थी हर शय की तफसील और हिदायत और रहमत। ये सुम्मा से क्या पता चल रहा है? आयत के शुरू में आपको बताया था कि असल में ये अहकामात सुहुफ इब्राहिम के, फिर उसके बाद सुम्मा आतैना मूसल किताब, फिर यही अहकामात मूसा को भी मिले और आज हम सबको मिले। क्या पता चला कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि सूरत बनी इसराइल के तीसरे और चौथे रकू में जो अहकाम हैं वो तौरात के अहकाम अशरा का खुलासा है, 10 कमेंडमेंट्स हैं, इसलिए यहाँ मूसा की किताब का तذکرہ है। और ये सब दिए क्यों? लअल्लहुम बिलिक़ाई रब्बिहिम यूमिनून, ताकि वो अपने रब की मुलाकात के ऊपर ईमान ले आएँ, अपने रब के सामने पेश होने का इंतज़ार करने लग जाएं। गोया कि आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला ने ये सारे अहकामात अमल के लिए दिए थे, चुमने चाटने के लिए नहीं दिए थे, लेकिन आज का मुसलमान इन चीज़ों से पीछे होके सुबुल में पड़ गया। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, आपने एक सीधी लाइन खींची। आप सोचिए, ज़मीन पर कोई बैठा हो और हाथ से ऐसे या कोई भी स्टिक ले के लाइन खींची, फिर आपने फरमाया कि हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये अल्लाह का रास्ता है। फिर उसके बाद आपने दाएं बाएं ऐसे टेढ़ी टेढ़ी लाइनें खींच दी और फरमाया ये शैतानी राहें हैं, यानी सुबुल है, और बीच की लकीर पर उंगली रखकर आपने इस आयत की तिलावत की। तो ये एक आपका विजुअली सिखाने का तरीका है, जो बुक है अल्लाह के नबी रसूल पाक बहैसियत मुअल्लिम, तो उसमें एक पॉइंट है ये कि अच्छा मुअल्लिम कौन सा होता है जो कुछ ग्राफिक्स के साथ, कुछ और वीडियोज़ के साथ, कुछ माइंड मैप्स बना के लोगों को दिखाए, और ये तरीका भी नबी सल्लम से मिलता है। इब्ने माजा और बज़ार की एक रिवायत है, हज़रत इब्ने मसूद से किसी ने पूछा कि सिरात मुस्तकीम क्या है? आपने फरमाया जिस पर हमने अपने नबी को छोड़ा, इसी का दूसरा सिरा जन्नत में जा मिलता है, इसके दाएं बाएं बहुत सी और राहें हैं जिन पर लोग चल रहे हैं और दूसरों को भी बुला रहे हैं, जो इन रास्तों में से किसी रास्ते पर चल निकला वो जहन्नुम में पहुँचा। फिर आपने इसी आयत की तिलावत फरमाई। ये कौन से रास्ते? फ़िरका वारियत के रास्ते, अल्लाह के नबी से सीधे रास्ते निकलेंगे और उधर तक ही जाएंगे। इसी तरह फरमाया कि सिराते मुस्तकीम के रास्ते के दोनों तरफ दीवारें हैं जिनमें बहुत सारे दरवाजे हैं और उनके चौपट खुले पड़े हैं और इन पर पर्दे लटके हुए हैं। जब इस सीधी राह पर एक बंदा चाहता है तो एक पुकारने वाला पुकारता है कि लोगों तुम इस सीधे रास्ते पे आ जाओ वरना बिखर जाओगे। जो शख्स इस सीधे रास्ते पे जा रहा होता है वो इन दरवाज़ों में से पीछे देखना चाहता है तो कहा जाता है कि खबरदार इस दरवाजे को ना खोलना वरना सीधी राह से भटक जाओगे। ये सीधी राह इस्लाम है, दोनों दीवारें अल्लाह की हदूद हैं और खुले हुए दरवाजे अल्लाह की हराम करदा चीज़ें हैं, और नुमाया शख्स है जो पुकार रहा है वो अल्लाह की किताब है और ऊपर से पुकारने वाला अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत करने वाला है जो हर बंदा है मोमिन के दिल में। ये तिर्मिज़ी की रिवायत का खुलासा है। जहन में कुछ बना? आप सीधे रास्ते पे जा रहे हैं ना, बस सीधे जाइए, ज़रा सा दरवाज़ा खोल के बाहर देखने लगेंगे ना तो बड़ी अट्रैक्शन दिखेगी और पलट जाएंगे। इसीलिए आप देखिए इस किताब के लिए एंड तक वही पहुँचते हैं कि जो सर मुँह लपेट कर इर्द गिर्द से बेनियाज होकर बर इस रास्ते पर चले रहते हैं। यही बात पीछे भी हुई थी, अल्लाह वलीज़ीना मनु युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अंधेरों से रोशनियों पे ले जाए, और पिछली बातों को करने के साथ अब हम सबको खुशखबरी दी गई आयत 155 में, वहाज़ा किताबुन अन्ज़लनाहु मुबारकुन, और ये है वो किताब जिसको हमने नाजिल किया जो बरकत वाली है। तुमने क्या करना है दूसरों की चीज़ों को देख कर? तुम्हारे तो अपने घरों में इतनी खूबसूरत किताब है, लिहाजा फ़त्तबिउहू, बस इसकी पैरवी करो। वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, और उससे डरो ताकि तुम पे रहम किया जाए। ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे मुसलमानों को एक खूबसूरत दावत दे दी गई कि अब तौरात को भी छोड़ दो, अब सुहूफ़ इब्राहिम की भी ज़रूरत नहीं, तुम्हारे घरों में बरकतों वाली किताब आ गई। और हकीकत है कि इस किताब की बरकतें अगर देखनी है तो आप ख़ुद पहले इस पर चल के देखें। इतनी बाबरकत किताब है, जिस चीज़ के साथ ये किताब लगती है उसमें बरकत आ जाती है। जिस शहर में उतरी उस शहर को बरकतों वाला शहर कह दिया, जो नबी लेकर आया वो रूहुल अमीन बन गया। इस किताब को छूना, इसके साथ हाथ लगाना, इसको वक्त देना, आपके अपनी ज़िंदगी में भी बरकतें ला रहा है। आ रही हैं कि नहीं आ रही? वही काम जो पहले नहीं होते थे अब होने लग गए, और वो सब कुछ आपको वापस मिलने लगेगा जिसकी सारी ज़िंदगी आप ख्वाहिश करते थे। आप जितना इस किताब के साथ जुड़ते हुए अल्लाह से खालिस होंगे ना, आपके शोहरों के दिलों में आपकी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। ये लिख के रख लें, अल्लाह ताला की एक कह लीजिए कि सुन्नत है। हम जितने मुखलिस होते हैं ना अल्लाह और उसके दीन से, अल्लाह इंसानों के दिलों में हमारा प्यार डाल देता है। होशियारियाँ चलाकियों से तो हमने कुछ ना लिया, हम सोचते हैं ज़रा खूब लाड दिखाएंगे, लच्छन दिखाएंगे, फिर मोहब्बतें मिलेंगी, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अदाएँ दिखाएंगे, नहीं मिलेंगी। आप देखिए कि सच्चे बंदे के चेहरे पे एक भोलपन होता है, एक मासूमियत है, जैसे बच्चे पे होती है या जैसे बुजुर्गों पे होती है। ऐसे लोगों के अंदर क्यों है? क्योंकि वो सच्चे होते हैं। इसके बरक्स जितना ज़्यादा इस दुनिया के पीछे हम लग जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे चेहरों का नूर और हमारी खुशी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला इस किताब से जोड़कर हमें बरकतों वाला बना दे। आप माँ बनने के नाते इस किताब से जुड़ेंगी ना, आपके सब बच्चे बरकतों के साथ आएंगे। मैं कैसी माँ को जानती हूँ कि सिर्फ 5-6 साल हुए हैं उसकी हिदायत के सफ़र को, और अब इस वक्त वो बच्चे जिन्होंने कभी शायद वक्त पे नमाज भी नहीं पढ़ी थी, वो इस वक्त खुद दीन का इल्म लेने के शौक़ में दीनी इदारों में दाखिले लेने जा रहे हैं। नमाज, रोज़ा, दाढ़ी, सूद छूटा, बिज़नेस में से वो सब चीज़ें निकाली जो हराम की थी, ये खुद रास्ते खुलते हैं। तो आप खुद इस रास्ते पर जम कर दूसरों को बहुत कुछ दे रहे हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हम सब जमे रहें।